श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय 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 राम जय जय राम सब लोग पुकारो सब लोग पुकारो श्री राम जय राम जय जय राम सब लोग पुकारो everybody श्री राम जय राम जय जय राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कितना अच्छा होता अगर सब लोग हृदय से पुकारते सब लोग हृदय से पुकारो सब लोग सफर करके आए हैं सब लोग थके हुए हैं लेकिन यहाँ पर दोबारा कभी आएंगे पता नहीं है ये बहुत ही सुंदर स्थान है यहाँ पर राम भगवान सबको आश्रय देते हैं सबको शरणागति देते हैं इसलिए सब लोग पुकारो संकोच मत करो आलस्य मत करो हृदय से पुकारो श्री राम जय राम जय जय राम जानकी वल्लभ राजा राम दशरथ नंदन जय सिया राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम बोलो बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अयोध्या हरे कृष्णा नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रसादाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो प्रभु रामचंद्र की असीम दया से असीम कृपा से हम ही बहुत ही अति सुंदर स्थान में आए हैं, इसलिए भगवान का जितना धन्यवाद करे उतना कम है। इतना सुंदर स्थान है ये। सबसे पहले हम यहाँ पर हमने क्या क्या दर्शन किया इसका रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब आए तो हमने एक बड़े कुंड का दर्शन किया, उसका नाम है हंस तीर्थ या चक्र तीर्थ। उसके बाद में हमने भगवान जगन्नाथ का दर्शन किया। इस जगन्नाथ की विशेषता यह है कि वो पद्मासन में बैठे हैं, लेकिन आधे पद्मासन पर बैठे हैं। एक पैर छुड़ा हुआ है, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ है, ऐसे बैठे हुए हैं अर्ध पद्मासन में। और उनका जो बायां हाथ है वो ऐसा है और दायां हाथ ऐसा है। उसका अर्थ यह है कि वो बाएं हाथ से लोगों को बुला रहे आओ, तो दाहिने हाथ से कृपा कर रहे हैं। He is calling by one hand and giving mercy by other hand। उनके साथ में उनके साथ में दो देवियां हैं, श्रीदेवी और भूदेवी। और समझने के लिए और सुनने के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो पेड़ आपको दिखाई पड़ रहा है इसी के तले कुछ जगन्नाथ जी का आविर्भाव हुआ था। इसको पीपल का वृक्ष कहते हैं, संस्कृत में कहते हैं अश्वत्थ। और भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं अश्वत्थोहम वृक्षाणाम अश्वत्थोहम, वृक्षों में मैं अश्वत्थ का वृक्ष हूँ। तो ये कृष्ण से अभिन्न वृक्ष है, बहुत ही दिव्य वृक्ष है। इसी के तले नीला देवी, भूदेवी और श्रीदेवी, इन तीन देवियों के साथ में जगन्नाथ भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए इस जगह को दक्षिण जगन्नाथपुरी भी कहते हैं, आदि जगन्नाथ भी कहते हैं, आदि जगन्नाथ क्षेत्र या दक्षिण जगन्नाथपुरी। एक पुरी तो पूर्व दिशा में है भारत के, और ये दक्षिण भारत की जगन्नाथपुरी। फिर हमने प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया, लेटे हुए प्रभु रामचंद्र का दर्शन किया। सबने किया? अगर मैं कुछ बताऊंगा और आपने नहीं दर्शन किया होगा तो आपको कथा के बाद में फिर दर्शन करना है। तो प्रभु रामचंद्र जो है वो अनंत शेष पर लेटे हुए हैं, लेकिन अनंत शेष और उनके बीच में दुर्वा दर्भांकुर बिछाया हुआ है, और उसमें प्रभु अनंतेश्वर लेटे हुए हैं। उनका जो लेटने का पोस्चर है उसको वीर शयना पोस्चर कहते हैं, वीर शयना। और उनके नाभि से तीन, क्या कहते हैं उसको, व्हाट इज इट कॉल्ड हिंदी, स्टेम्स, तीन ऐसे निकल रहे हैं, शुरुआत में तुम लोग ऐसे करते हो यार। सब लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलो।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। तो नाभि से तीन, क्या कहते हैं उसको हिंदी में, तना, देठ मराठी में कहते हैं उसको, तीन निकल रहे हैं। एक में ब्रह्मा जी का आविर्भाव है, एक में सूर्य का आविर्भाव है, एक में चंद्र का आविर्भाव है। वो सब दीवाल में लगे हुए हैं, अगर आप देखेंगे, देखा होगा गौर से, तो गोल एक तरफ है, दूसरा गोल दूसरी तरफ है, बीच में ब्रह्मा जी हैं। तो एक सूर्य भगवान है, एक चंद्र भगवान है। फिर इनका एक नाम है दर्भ शयन प्रभु रामचंद्र, दूसरा नाम है दुर्वाशयन, एक नाम दुर्वासन भी है, दुर्वासन दुर्वाशयन दर्भ शयन। और उनके मुख कमल के पास में गरुड़ जी बैठे हुए हैं, मार्कंडेय ऋषि बैठे हुए हैं, उनके चरणों के पास में हनुमान जी बैठे हुए हैं, उनके साथ साथ रावण के गुप्तहेर शुक और चारण भी बैठे हुए हैं। और दूसरे कमरे में थोड़े से पहले लेफ्ट साइड में कौन बैठे हैं, विभीषण जी, शरणागति भगवान हमारी स्वीकार करेंगे इस भावना से खड़े हैं। और दाहिने कमरे में वारुणादेव वरुण देव और उनकी पत्नी वारुणी दोनों वहाँ पर खड़े हैं, वो भी शरणागति माफ़ी मांगने के लिए वहाँ पर खड़े हैं। तो ये पूरा दर्शन हुआ। उसके बाद में लक्ष्मी देवी का दर्शन है, और उसके बाद में कौन सा दर्शन था चौथा, आदि जगन्नाथ तो पहला हो गया, दरुआ दर्भ शयन दूसरा हो गया, तीसरा नरसिंह भगवान का दर्शन हुआ, और चौथा लक्ष्मी देवी का हुआ। हाँ ठीक है ना, सबने देखा कि नहीं देखा, नहीं देखा है तो आपको दोबारा जाके देखना है जाने के समय। इतने सब दर्शन यहाँ पर है, हाँ, क्योंकि इन्होंने ठीक से ऑर्गेनाइज नहीं किया था, सब लोग ऐसे बिखर बिखर गए थे, इसलिए आपको दर्शन ठीक से मिला नहीं। अभी मैंने बताया है इस जगह पर आपका नोटबुक होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी कथाएं हैं कि अगर आपने ऐसा ही सुन लिया तो सब कुछ बम्पर हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलने के पहले भी सब भूल जाएंगे आप, इसलिए बेहतर ये है कि आप सब लोग लिख लो अच्छी तरह से। तो सबसे पहली कथा ये है कि जब भगवान ने अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को जन्म दिया, तो ब्रह्मा जी अज्ञान के अंधकार में थे, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मेरा क्या उद्देश्य है, क्या सेवा है मेरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस समय भगवान ने उनके हृदय में सूक्ष्म रूप में पूरा ज्ञान दे दिया। श्रीमद् भागवत में चार श्लोक है, चतुश्लोकी भागवत, वो उन्होंने हृदय में प्रकट किया, और उसके प्रकट होते ही सारा ज्ञान जो होना चाहिए था वो सब ब्रह्मा को पता चला। उसके पश्चात शास्त्र में लिखा है कि भगवान ब्रह्मदेव यहाँ पर आए, और यहाँ पर भगवान ने हंस अवतार लिया, राजहंस का अवतार लिया भगवान ने, और उस अवतार के रूप में यहाँ पर बैठकर भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को पूरा दोबारा ज्ञान दिया, इसलिए उस स्थान को कहते हैं हंस तीर्थ। अभी समझ में आपको आया, सत्ययुग में ये एक योजन चौड़ा था, मतलब 8 मील उसका व्यास था सत्ययुग में, त्रेतायुग में ये 3/4 हो गया, द्वापर में आधा हो गया, और कलयुग में एक छोटे से पौंड के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये बहुत ही दिव्य स्थान है, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किया है हंस अवतार से। उसके आगे यहाँ पर क्या हुआ है कि तीन भाई थे, माली सुमाली और माल्यवान, उनमें से दो भाई राक्षस भाव के थे, आतंक करने वाले, और माल्यवान भगवान के भक्त थे। सो दो जो राक्षस थे उन्होंने बहुत हाक कर बचा दिया, सब जगह उन्होंने इतना इतना आतंक किया कि सब देवता परेशान हो गए, और फिर सब देवता परेशान हो गए, ऋषि मुनि परेशान हो गए, सब ऋषि मुनि पहली बार देवताओं के पास गए, देवता उनको लेकर ब्रह्म विष्णु के पास गए, और फिर उन्होंने विष्णु ने उनको दर्शन दिया और कहा कि मैं आ रहा हूँ, स्वयं आऊँगा और इसका इलाज करूंगा। तो विष्णु भगवान सांवले रंग के जैसे घने बादल की तरह और गरुड़ सुनहरे प्रकाश के समान, सूर्य के समान गोल्डन, इस तरह से भगवान गरुड़ पर जो सोने की तरह चमक रहे थे उसके ऊपर सांवले से बादल के रूप में उस रंग के भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने माली सुमाली के साथ में बहुत घनघोर युद्ध किया। इतना घनघोर युद्ध किया कि सभी देवता लोग एक समय पर ऐसे सोच रहे थे कि शायद भगवान हार जाएंगे, इतना भयंकर युद्ध किया। क्योंकि भगवान ने जितने अस्त्र फेंके, जितने भी अस्त्र फेंके उसमें से कोई परिणाम नहीं हुआ माली और सुमाली पर। सभी भगवान के द्वारा फेंके गए अस्त्रों को उन्होंने निष्प्रभ कर दिया, जितने जितने अस्त्र निकाले सब निष्प्रभ हो गए। उसके बाद में भगवान ने सुदर्शन चक्र को आह्वान किया और सुदर्शन चक्र ने न केवल माली सुमाली का संहार किया लेकिन उनके साथ जो करोड़ों राक्षस थे जो भगवान के साथ युद्ध कर रहे थे उन सबका संहार कर दिया उन्होंने। तो सबका संहार करने के पश्चात चक्र के ऊपर बहुत सारा मांस और खून लगा था और चक्र भी कई मील तक लंबे थे। ऐसा नहीं कि वो भगवान के हाथ में दिखते हैं दो चार इंच के, ऐसा नहीं, बहुत विस्तार स्वरूप में उन्होंने ये संहार किया था। तो उनके अंग पर सब जगह मांस और खून लगा हुआ था, बड़े दुखी थे वो। भगवान के पास आए, उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अपने आप को अशुद्ध अपवित्र अनुभव कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा कि आप हंस तीर्थ पे जाकर स्नान करना, तब आप अपने सारे अशुभ अपवित्र जो आपको लग रहा है भावना वो सब नष्ट हो जाएगी। क्योंकि चक्र तो कोई अशुद्ध हो सकता नहीं, कोई भगवान का दिव्य अस्त्र है वो, और स्वार्थ के लिए स्वयं के लिए किसी को नहीं मारते वो। जब भगवान का आदेश होता है तो भगवान की इच्छा के अनुसार वो राक्षसों का संहार करने में अपने आप को लगा देते हैं। फिर भी एक भक्त की नम्र भावना होती, जैसे प्रभु रामचंद्र भी जब रावण का वध किया उन्होंने तो क्या बोला उन्होंने अगस्त्य ऋषि को कि मैंने ब्राह्मण का हत्या किया है। भगवान जो है एक आदर्श स्थापन करते हैं सबके सामने और उसका भी प्रायश्चित करते हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर रामेश्वर का लिंग स्थापन किया है। उसी प्रकार से चक्र भी उसी भावना में है कि अपने आप को मांस और रक्त के स्पर्श से अशुद्ध मान रहे हैं, तो भगवान ने यहाँ पर उनको स्नान करने को रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने यहाँ पर स्नान किया है और यहीं पर बस गए हो। इसलिए हंस तीर्थ को चक्र तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। ये दूसरी कहानी है। ये जो पूरा विभाग है, पूरा क्षेत्र है, ये पूरा अरण्य जो है यहाँ पर, इसका नाम पड़ा है तिरुपुल्लाणी, है ना। तिरु यानी का मतलब होता है कि श्री, हम कहते हैं ना श्री, मिस्टर या श्रीमान या श्रीमती, वैसे तमिल में तिरु कहते हैं तिरुपति, हाँ तिरुपुल्लाणी, तिरुमंगाई अलवर, तो ये आदरवाचक संबोधन है, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल एड्रेस। तो यहाँ पर पुल्ला नाम के ऋषि इस जंगल में तपस्या करते थे इसलिए तिरुपुल्लाणी, और भी एक नाम उसका है पुल्लारण्य, जहाँ पुल्ला ऋषि इस अरण्य में तपस्या करते थे इसलिए उसका नाम पड़ा है पुल्लारण्य। इन्होंने कई हजारों साल तक केवल कंदमूल खाकर तपस्या किया है और भगवान का ध्यान किया है और इसलिए ये एक पूरा क्षेत्र जो है उनके नाम से जाना गया है। पुल्ला ऋषि ने 13,000 साल तपस्या किया कंदमूल खाकर और उन्होंने चक्रतीर्थ में स्नान भी किया था और उनके बहुत ही प्रेम पूर्वक ध्यान की वजह से इस अश्वत्थ पेड़ के नीचे भगवान प्रकट हो गए, आदि जगन्नाथ भगवान अपने 3 पत्नियों के साथ में। क्या बताया नाम मैंने, श्रीदेवी। मेरा ऐसा विचार था कि आपके लिए एक क्विज बनाया जाए मुंबई जाने के पहले, हाँ, क्योंकि अन्यथा यहाँ पर आने से लाभ क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ कमिंग हियर, यू जस्ट वॉन्ट टू हियर एंटरटेन योर सेल्फ एंड जस्ट टू टाइम पास एंड लुक हियर एंड देयर एंड फॉरगेट एवरीथिंग, हाँ, ओनली ऑफर दंडवत डिटीज, दर्शन तो कर लिया हमने, हमको इस जगह का सार ग्रहण करना है। ये तपस्या की भूमि है, यहाँ पर पुल्ला ऋषि ने तपस्या करके भगवान को अवतरित कराया है। ही हैज मेड द लॉर्ड अपीयर हियर बाय द पावर ऑफ हिज डिवोशन, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वी हैव कम हियर ऑल्सो टू इन्वोक द अटेंशन ऑफ द लॉर्ड टू अस बाय द पावर ऑफ आवर डिवोशन, वेरी लिटिल। हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं, हम लोग भी इस जगह का सार ग्रहण करना चाहते हैं कि इस जगह पर 13,000 साल तक बहुत कठोर तपस्या पुल्ला ऋषि ने की है और उसके प्रतिसाद के रूप में स्वयं भगवान नारायण आदि जगन्नाथ बनकर इस पेड़ के नीचे उनके लिए अवतरित हुए और उनकी ऐसी कृपा है कि उन्होंने तपस्या किया और दर्शन दिया भगवान ने यहाँ पर। तो भगवान से उन्होंने क्या मांगा, संत कितने दयालु होते हैं। नारद मुनि को भी वैसे ही दर्शन प्राप्त हुआ था भगवान का, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का, जो अपनी ही कहानी सुनकर बेहोश हो गए थे। आपको याद है कि आप लोग जगन्नाथपुरी में आए थे तब हमने कथा बताई थी आपको। तो नारद मुनि ने भगवान का भाव विभोर रूप में दर्शन किया, जिसके हाथों के पंजा नहीं है, पैर सब अंदर चले गए हैं और बड़ा विचित्र उनके चेहरे पर स्मित हास्य है, बड़ी बड़ी आँखें हैं। तो ये देखकर नारद मुनि के हृदय में बड़ा आनंद का अनुभव हुआ। तो खुद के लिए आनंद का अनुभव करना अच्छी बात है, लेकिन संत लोग इतने दयालु और कृपालु होते हैं कि जब उनको कोई दिव्य प्राप्ति होती है तो वो सब हमारी याद करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरा हो गया काम अभी मैं जा रहा हूँ, नहीं, उनका क्या होगा जो भौतिक दुनिया में जन्म मृत्यु के जस श्रृंखला में कष्ट भोग रहे हैं, उनका क्या होगा। मुझे तो आनंद मिल गया, मेरे हृदय में भी इतना दिव्य आनंद का स्फुल्लिंग निकल पड़ा, उसका मैं अद्भुत अनुभव कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यही अनुभव सभी जीवों को प्राप्त हो। इसलिए नारद मुनि ने सबसे पहले इतना आनंद में विभोर होने के बाद पहले दर्शन किया भगवान का और वरदान मांगा कि भगवान आप इसी रूप में जगन्नाथपुरी मतलब पृथ्वी पर अवतार लोगे। खुद दर्शन का आनंद लेके दर्शन समाप्त होना मुमकिन था ना, लेकिन उन्होंने आगे की सोची और इसलिए जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी में विराजमान है, क्योंकि संत ने विनती की उनको। उसी प्रकार से पुल्ला ऋषि ने भी यहाँ पर स्वयं को दर्शन प्राप्त हुआ, अति आनंद का अनुभव हुआ, सब कुछ परिपूर्ति जीवन की हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन हमको और आपको नहीं भूले, वो सबकी याद किया उन्होंने। अनंत अनंत खरबों खरबों जीव जो यहाँ पर शरीर धारण करके कष्ट भोग रहे हैं, उन सबके बारे में सोचकर उन्होंने कहा कि आप यहीं रहो और यहीं रहकर सबको दर्शन दो। तो भगवान सबको बुला रहे हैं और आशीर्वाद भी दे रहे हैं। यथावकाश पुल्ला ऋषि ने भगवान का दर्शन प्राप्त करने के बाद भी उनका भजन पूजन नहीं छोड़ा और अपने जीवन के अंत में वो भगवान के धाम में वैकुंठ में चले गए। इतनी सुंदर जगह है ये, और मुझे क्या बताऊँ मैं आपको, वर्णन नहीं कर सकता इस पेड़ को देखकर मुझे क्या लग रहा था, आई कांट एक्सप्लेन टू यू। बड़ा ही दिव्य वृक्ष है ये, सब लोग इस वृक्ष को प्रणाम करना, इसकी परिक्रमा करना, उसको स्पर्श करना, ये कल्प वृक्ष है जहाँ भगवान का दर्शन हुआ है। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है कि जिस पेड़ के नीचे खड़े होकर आप जो भी दिव्य इच्छा प्रकट करते हो, मैंने कहा दिव्य इच्छा, केवल इच्छा नहीं कहा, मतलब आप बोलेंगे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नए साल में प्रमोशन मिलना चाहिए, हाँ जल्दी शादी होनी चाहिए, ये सब भौतिक इच्छाओं का कोई लाभ नहीं है क्योंकि वो नश्वर इच्छाएं, उनका फल प्राप्त होने पर भी वो फल भी समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर आपको भगवान के विषय में इच्छा प्रकट करनी है कि मैं आपके चरणों की भक्ति चाहिए। पुल्ला ऋषि ने यहाँ पर रहकर कोई भौतिक बंगला गाड़ी जमीन जुमला कुछ मांगा नहीं था, केवल भगवान की भक्ति मांगी थी, इसलिए भगवान प्रकट हो गए। भगवान तब प्रकट होते हैं जब जीव का हृदय भौतिक इच्छाओं से पूर्णता मुक्त हो जाता है। अनलेस अवर हार्ट इज कम्प्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटीरियल डिजायर्स, लॉर्ड कैन नॉट अपियर टू यू, लॉर्ड विल नॉट अपियर टू यू। तो हमें वो इच्छा प्रकट करनी है कि हमारा हृदय जो है पूरी तरह से भौतिक इच्छाओं से साफ हो जाए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहैतुकी त्वयि। मुझे धन की अपेक्षा नहीं है, मुझे सुंदर स्त्री का भोग करने की इच्छा नहीं है, मुझे राधपद नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, अगर बार बार जन्म लेना पड़ा तो भी चलेगा, लेकिन हर जन्म में भवतात् भक्तिर अहैतुकी त्वयि, आपके प्रति अहैतुकी, कोई और इच्छा न रखते हुए सेवा मिले, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। वो कहते हैं कि भगवान अब मैं जान चुका हूँ, ये एक बड़ी बुद्धिमानी की बात है, अगर हमको समझ चुके हैं कि हम इस दुनिया में दुख भोग रहे हैं, अगर लगता है कि हम दुनिया में सुख भोग रहे हैं, आगे भी और सुख मिलेगा, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, तो ये मूर्खता का लक्षण है। इसलिए पहला लक्षण बुद्धिमानी का यह है कि उस जीव को समझ में आता है कि मैं यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ। ये कोई नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये फैक्चुअल थिंकिंग है, ये वास्तव अनुभूति है, ये कोई नकारात्मक विचार प्रणाली नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अभी जान चुका हूँ कि अई नंद तनुजा, हे नंद तनुजा, हे नंद के पुत्र, अई नंद तनुजा किंकरम, मैं आपका किमकर दास हूँ। मतलब क्या किमकर का मतलब क्या होता है? किम कर, क्या करूँ? He only asks one question, no other question. What to do? What should I do now? और कोई प्रश्न नहीं पूछते वो। किम कर, आपकी सेवा में भी क्या करूँ? अई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधौ, मैं इस दुनिया के विषम भव सागर में, विषम क्यों कहा गया है? कभी दुख है, कभी सुख है, कभी कष्ट है, कभी पीड़ा है, बुढ़ापा है, बीमारी है, अन्य प्रकार के यहाँ पर कष्ट हैं। तो विषम भव सागर में मैं गिर पड़ा हूँ, पतितम, कृपया तब पाद पंकज, मुझे आप उठाइए इस भव सागर से, इस भयंकर दर्द वाले, पीड़ा वाले, मृत्यु सागर से मुझे आप उठाइए और आपके चरणों में कैसे रखिए? एक धूली कण की रखा। कृपया तव पाद पंकज, आपके चरण कमल, पाद पंकज, पंकज यानी के कमल, पाद यानी के चरण, आपके जो कमल जैसे चरण कमल है उसके बीच में बड़ा स्थान मत दीजिए, कोई आसन बिठा के बिठाने की जरूरत नहीं है, एक यक्कश्चित, एक तुच्छ धूली कण के रूप में आप मुझे रख लीजिए। ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि वो जानते हैं कि दुनिया के भवसागर में बहुत दुख है और भगवान के चरणों में पूरा तरह से सुख शांति और सुरक्षा है। इस भवसागर में पूर्णता असुरक्षित है, हम लोग कभी मृत्यु झड़प लेगी हमारे को पता नहीं चलता है, पूर्णता असुरक्षित, ऑलवेज अनसेफ। और भगवान के चरण कमल का स्थान कैसा है? हमेशा के लिए सुरक्षित, वहाँ कोई त्रिगुण आपको पकड़ेंगे नहीं, वह माया नहीं पकड़ सकती आपको, कोई प्रकार का मृत्यु आपको पकड़ नहीं सकता है, कोई भय नहीं वहाँ पर, हर तरह से आनंदमय, सुरक्षित और दिव्य स्थान है भगवान का चरण कमल। इसलिए भक्त जो है वो प्रार्थना करता है। तो पुल्ला ऋषि का उदाहरण से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि केवल यहाँ पर आना, दर्शन करना, पाँव पड़ना, हाथ जोड़ना सब लोग करते हैं, हम लोगों को यहाँ पर उसका भाव ग्रहण करना चाहिए। फिर इस बार इस जगह पर, कई अन्य जगह पर बहुत ऋषियों का वर्णन भगवद गीता में भी आया है, असित देवल व्यास, ऐसे बहुत सारे वर्णन अर्जुन उनका जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं भगवद गीता में, केवल मैं नहीं, ये सारे ऋषि मुनि भी बोल रहे हैं कि आप भगवान हो। असित देवल व्यास जैसे महान महान जो ऋषि मुनि हैं वो भी बोल रहे हैं कि आप भगवान हो, मैं केवल नहीं बोल रहा हूँ। तो उसमें से एक थे देवल ऋषि। तो देवल ऋषि जब तपस्या करने लगे थे तो वहाँ पर सात देवताओं की स्त्रियाँ आई इंद्र के तरफ से, और उन्होंने निर्वस्त्र होकर नृत्य किया, उनको हर प्रकार से मोहित करने का प्रयास किया, अपने देवी दिव्य लोक, देवलोक के सौंदर्य और जो भी उनका चार्म्स, यू नो दैट रजोगुण का प्रभाव जो होता है जीव को इंद्रिय भोग के लिए आकर्षित करने के लिए, टू अट्रैक्ट द लिविंग एंटिटी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड टू फॉरगेट द लॉर्ड एंड टू ब्रेक तपस्या एंड वर्शिप, तपस्या पूजा को भंग करने के लिए उन्होंने देवल ऋषि की महानता को न समझते हुए ऐसा वृत्त किया। संत के लिए तो ये अपमानजनक होता है, अगर रावण होता तो बोलता कि मेरा सम्मान हो रहा है कि आप ऐसा प्रकार करते मेरे सामने कर रहे हो, ही विल बी वेरी हैप्पी। बट संत लोग दुखी होते हैं, अपना आपका अपमान समझते हैं कि ऐसा गैर व्यवहार, दुर्व्यवहार ये सारी कन्याएं हमारे सामने कर रही हैं। तो देवल ऋषि ने उनको शाप दिया कि आप सब यक्ष शरीर प्राप्त करोगे। यक्ष शरीर मतलब एक नरक जैसा ही है वहाँ पर यक्ष लोगों का, है तो दिव्य लोक, देवलोक है, यहाँ से ऊंचा है लेकिन फिर भी इतना श्रेष्ठ नहीं है। जैसे ही यक्षों का, स्त्रियों का शरीर प्राप्त किया तो ये होश में आ गई कि हमने किसके सामने डांस किया, तो माफी मांगने लगी, पश्चाताप करने लगी। हाँ, हमारी भी ऐसी अवस्था है, हमको अच्छी तरह से कहा जाए तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, दंड मिलेगा तो तुरंत हम जग जाते हैं, हाँ डंडा गिरेगा तो तुरंत हम लोग होश में आ जाते हैं, तब तक अच्छे कहने से हम लोग समझते नहीं हैं। तो वैसे ही देवल तपस्या कर रहे हैं, ये लोग डांस कर रहे हैं तो समझ में नहीं आया कि ऋषि हैं, तपस्या कर रहे हैं, कोई यहाँ पर इंद्रिय भोग करने के लिए नहीं आए, जब सांप मिला तो होश में आ गए, तो वो पश्चाताप किया, माफ़ी मांगी, सही भाव से पश्चाताप किया। तब देवल ऋषि बोले कि आप चक्र तीर्थ पर जाओ, वहां पर पुल्ला ऋषि जो है वो तपस्या कर रहे हैं, उनकी दया से वहां पर आदि जगन्नाथ प्रकट हो गए हैं, आप वहां पर जाओ, आदि जगन्नाथ का दर्शन करना वहां पर जाके, और आदि जगन्नाथ की पूजा भी करना। तो फिर वो सात देव कन्याएं यहां पर आई हैं, उन्होंने यहां पर पुल्ला ऋषि का शरणागति स्वीकार किया है, दे सरेंडर टू पुल्ला ऋषि, और उन्होंने पूछा उनको कि आप हमारे पर कृपा करो, हमको उपदेश करो। तो उन्होंने कहा कि आप यहां पर रहकर आदि जगन्नाथ भगवान की सेवा करो, पूजा करो, और कुछ ही समय बाद भगवान नारायण प्रभु रामचंद्र के रूप में अवतार लेने वाले हैं, सीता की खोज में यहाँ पर आने वाले हैं। तो जब वो आएंगे, उनका दर्शन मात्र से आप इस यक्ष के शरीर के शाप से मुक्त हो जाएंगे और पुनः आपका देव शरीर प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने रहकर तपस्या किया है, भजन किया है और पूजन भी किया है आदि जगन्नाथ का, पुल्ला ऋषि के आदेश में और शरण में, और तब जाकर प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए हैं, और वो कहानी बताऊँगा आपको मैं। उनके दर्शन से फिर वो यक्ष शरीर से मुक्त हो गई हैं और देव शरीर प्राप्त करके और चक्र तीर्थ में स्नान भी किया उन्होंने, पुल्ला ऋषि के आदेश के अनुसार हर रोज स्नान किया, हर रोज भजन किया, और देव शरीर प्राप्त करने के पश्चात उनको भक्तिभाव भी प्राप्त हुआ था, क्योंकि संत के संग में रहे हो, फिर अपने धाम में अपने देवलोक में चले गए, लेकिन भक्तिभाव को लेकर गए। जैसे यहाँ पर सब लोग मनुष्य हैं, और बाकी योनि के लोग क्या सोचते होंगे, हर मनुष्य भक्त होता है भगवान का, लेकिन हम जानते हैं हर मनुष्य भगवान का भक्त नहीं होता। वैसे हम सोचते हैं हर देवता भगवान का भक्त होगा, हर देवता भगवान का भक्त नहीं होता। कई देवता जो है यहाँ पर जो मनुष्य होने के पश्चात यज्ञ कर्मकांड करके स्वर्ग में अपनी जगह बुक कर लेते हैं, क्यों, वहाँ पर अप्सरा है, क्या क्या नंदन वन है, अलग अलग प्रकार के भोजन है, वहाँ पर शरीर में खुशबू आती है, और इतना अलग प्रकार का भोग प्राप्त होता है कि आप लोग यकीन में नहीं कर सकते और कल्पना भी नहीं कर सकते। तो लोग वो भोगने के लिए वहाँ पर जाते हैं। ऐसे कई देवता होते हैं जो सुंदर शरीर प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ पर इंद्रिय भोग करने के लिए रहते हैं, टू एन्जॉय सेंस ग्रेटिफिकेशन। बट उसमें से नारद मुनि वगैरह वहाँ पर आते रहते हैं, देवल ऋषि, असित ऋषि, अंगिरा मुनि, उनको भी बोध देने के लिए आते रहते हैं, क्योंकि वो भी मशगूल रहते हैं, दुर्वासा मुनि, ये सब वहाँ पहुँचते हैं उनको उपदेश करने के लिए। तो यहाँ पर जो गीता का उपदेश होता है वो वहाँ पर भी होता है, भागवत जी का उपदेश यहाँ पर होता है तो वहाँ पर भी होते रहता है, वहाँ पर भी गंगा जी आती है सबको। अभी आप बोलेंगे गंगा जी का स्वर्गलोक में क्या काम है, वहाँ पर भी लोग देवता शरीर में बहुत सारे भोग करते रहते हैं, और गंगा जी वहाँ पर उपस्थित है, जमुना जी भी वहाँ उपस्थित हैं सबको शुद्ध करने के लिए। तो इस तरह से कुछ मेन जो देवता हैं वो भगवान के बड़े भक्त हैं, जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, बहुत सारे देवता हैं भगवान के, वरुण देव हैं, लेकिन ये सब लोग बार बार पुनः पुनः अलग अलग टाइम पे भगवान भगवान है ये भूल जाते हैं, दे फॉरगेट। दुर्वासा मुनि लेकर आए विष्णु से महाप्रसादी का माला लेकर आए, उन्होंने इंद्र को प्रसाद के रूप में दिया, कितना प्रेम से, इतना दूर से लेके आए वो दे दिया उन्होंने, तो इंद्र तभी अप्सराओं का डांस देखने में बिजी थे, इतने मशगूल थे कि दुर्वासा मुनि आए उनका सत्कार करना चाहिए, दंडवत प्रणाम करना चाहिए, कुछ याद नहीं किया उन्होंने, ऊपर से माला दिया वो अपने हाथी को दे दिया, इतने मशगूल थे वो, साइड में चल रहा है डांस, इतना अट्रैक्टिव है वो, संत का दर्शन भी उसमें महत्व नहीं समझ रहा है उसको। तो हाथी ने क्या कहा, वो तो हाथी है, उसने माला लिया और पैर में कुचल दिया उसको। तो इंद्र बनने का लाभ क्या है, सभी देवताओं के 33 करोड़ देवताओं के, उनके पूरे परिवार के, देवलोकों के आप राजा हो, यू आर सपोज टू बी डिवोटी ऑफ गॉड एंड डिवोटी ऑफ गॉड एंड गॉड्स डिवोटीज ऑल्सो, लेकिन जब वो आपके दरबार में आपको कृपा करने के लिए आ रहे हैं तो आप उनको पहचान नहीं पा रहे और उनका अपमान भी कर रहे हैं, निग्लेक्ट भी कर रहे हैं उनको। तो दुर्वासा ने शाप दिया कि ऐसी मति आपकी है तो आपका सब ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो गया, तुरंत बलि महाराज ने आकर सब पादाक्रांत कर लिया और सारा देवता इंद्र के साथ में सब लोग गुफा में छुप गए, ना घर है, ना दार है, ना ऐश्वर्य है, ना अच्छा भोजन है, ना देवता की कन्या है, अप्सरा है, कोई नहीं वहाँ पर, अभी सब मिट गया, ऐसा है भोग की भावना। इसलिए देवता बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए हमको, हमको हमेशा भगवान का भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सारे देवता लोग 33 करोड़ और अनंत खरबों उनका परिवार है, ये सारे देवता लोग कलयुग में मनुष्य के शरीर में जो वैष्णव बने हुए हैं ऐसे मनुष्य के शरीर में जन्म लेने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये आपको पता है या नहीं है मालूम नहीं है, लेकिन आप पता हो गया आपको। आपके घर में जो आप भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हो, आपके कुल में जन्म लेने के लिए ये सारे देवता व्याकुल हैं, जिनको वो बोध हो गया है, अनुभूति हो गई है, वो हैव रियलाइज्ड दैट आवर लाइफ इज यूजलेस लाइफ, फुल ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड मोस्टली फुल ऑफ फॉरगेटफुलनेस ऑफ गॉड. वी डोंट वॉन्ट टू स्टे देयर फॉर लैक्स ऑफ ईयर्स. वी वॉन्ट टू कम डाउन इन कलियुगा, और कलयुग में हम लोग वैष्णव बने हुए भक्तों के घर में जन्म लेंगे और कुछ 60-70 साल में अपना जीवन का परिपूर्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करेंगे, कृष्ण भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त करके गौलोक धाम में प्रवेश करेंगे. ये हमारी आज की स्थिति है. लेकिन हम लोग क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर कर्मकांड करें और उनके पास जाएं. जैसे बॉम्बे के लोग क्या सोचते हैं, अरे बॉम्बे में क्या है, US का वीज़ा मिलना चाहिए, वहाँ पर जाएंगे. वो तो स्वर्ग है, स्वर्ग वहाँ पर, लेकिन स्वर्ग नहीं है, वो नर्क है जो भगवान को भुला देता है. वो कितना भी बड़ा ऐश्वर्य वाला क्यों ना हो, उसको नरक ही मानते हैं. शरीर को बहुत खुशी मिलेगी आपको, लेकिन आत्मा का अवनति हो जाएगा. आत्मा विल बी डिग्रेडेड एंड डिस्ट्रॉयड. डिस्ट्रॉयड आत्मा को नाश नहीं कर सकता है, लेकिन आत्मा का भक्ति का नाश कर देगा ऐसा वातावरण. तो गांव के लोग सोचते हैं बम्बई चले जाएँ, बम्बई के सोचते हैं अमरीका चले जाएँ, और अमरीका के लोग भोग लेने के बाद पश्चाताप कर सोचते हैं कि वृंदावन आ जाएँ, मुंबई में आ जाएँ. हाँ, बम्बई में मतलब भारतवर्ष में आ जाएँ, हिमालय में चले जाएँ, जगन्नाथपुरी में आ जाएं, रामेश्वर में आ जाएं, श्रीरंगम में आ जाएं. भगवान के बारे में समझने के लिए इतना सारा भोग लेने के बाद में बोल रहे इसमें कोई दम नहीं है. हम लोग क्या सोचते हैं, उनको अक्कल नहीं है, हमको जाना है वहाँ पर. जो उन्होंने चूस चूस कर छोड़ दिया है उसको हमको जाके चूसना है. पुनः पुनः चरवित चरणानाम. उन्होंने जो चूस चूस कर छोड़ दिया है उसको हम लोग चूसने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें से कोई रस नहीं निकल रहा है, फिर भी सोच रहे हैं कि हम चूस रहे हैं ना, यही बड़ी बात है. उनको समझ में आया कि इसको चूसना चाहिए. एनीवेज, तो पुल्ला ऋषि की कृपा से 7 देव कन्याओं का भी उद्धार हो गया. कण्व ऋषि को भी यहाँ कृपा प्राप्त हुई. कण्व ऋषि भी एक बड़े महान ऋषि हैं. इनके आश्रम में शकुंतला देवी को रखा गया था जन्म होने के पश्चात. वो कामेवन में उनका आश्रम है. तो कण्व मुनि को भी आदि जगन्नाथ की कृपा यहाँ प्राप्त हुई है. इसी जगह से सेतु का बंधन निर्माण किया गया, मतलब हुआ. इन दिस प्लेस ओनली द ब्रिज वॉज स्टार्टेड टू बी बिल्ट. द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिज स्टार्टेड ओवर हियर. इसलिए इस जगह को आदि सेतु भी कहते हैं. ओके, शास्त्र कहते हैं कि यहाँ पर आकर चक्र तीर्थ का आचमन लेने के पश्चात अगर आप 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर ऐसी जगह, यहाँ पर जाना मुमकिन नहीं, हमने बहुत कोशिश किया. 1 किलोमीटर आगे यहाँ पर ऐसा स्थान है कि जिसमें जाने से आपको जमीन के अंदर, पानी के अंदर सेतु का दर्शन अभी भी होता है. क्योंकि 3 टुकड़े भगवान ने किए सेतु के तोड़ने के बाद. यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ से लेकर धनुषकोटि तक, वो जमीन के नीचे अभी भी है. और जो लोग होते ना, वो तैराक लोग जो पानी के नीचे आते हैं, वो उसका दर्शन करते हैं उसका. और इंटरनेट से और सैटेलाइट से भी उसके फोटोग्राफ लिए गए हैं. इंटरनेट में कई बार फोटोग्राफ्स आए हैं. तो ये जो हिस्सा है अभी भी बना हुआ है, जो यहाँ से लेकर धनुषकोटि तक है, कितना किलोमीटर होगा, अरे 50-60 किलोमीटर, ये हिस्सा अभी भी मौजूद है. तो उसका दर्शन करने के बाद यहाँ पर आदि जगन्नाथ का दर्शन करेंगे, चक्रतीर्थ में स्नान करेंगे. तो ऐसा वरदान दिया गया है कि पुनः हम दोबारा इस दुनिया में जन्म नहीं लेंगे, विल नॉट टेक बर्थ अगेन. अभी इस जगह की कथा ऐसी है कि दशरथ महाराज यहाँ पर आए थे और दशरथ महाराज ने आदि जगन्नाथ का सेवा किया था. क्योंकि उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हुई थी, तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के हेतु से यहाँ पर तपस्या किया था, भजन किया था. तो आदि जगन्नाथ की प्रेरणा से उन्होंने जाकर फिर अयोध्या में जाकर पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया. और उस यज्ञ के फल के रूप में उनको प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई. तो यह दशरथ की भी पूजा स्थली है, भजन स्थली है. बहुत दिव्य स्थान है ये. अनंत लोगों ने यहाँ पर भजन पूजन किया हुआ है. दशरथ महाराज ने यहाँ पर आदि जगन्नाथ की कृपा से पुत्र प्राप्ति की है. उसके बाद में प्रभु रामचंद्र भी खुद उसका वर्णन कर रहे हैं इस जगह का. वो कहते हैं कि मैं भी यहाँ पर, ये विभीषण को बता रहे हैं वो, कि मैं रावण को मारने के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आऊँगा और आदि जगन्नाथ की सेवा करूंगा. इसलिए जब विभीषण शरण आए तो उसको लेकर प्रभु रामचंद्र यहाँ पर आए थे. इनफैक्ट सच्ची बात तो यह है कि विभीषण यही इसी जगह पर आए थे प्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए। इसी जगह पर प्रभु रामचंद्र ने विभीषण को शरण दिया है और उसके पश्चात इसी जगह पर उन्होंने कहा कि यहां पर आप हम आदि जगन्नाथ की पूजा करेंगे, क्योंकि आदि जगन्नाथ की पूजा करने से शत्रु पर विजय प्राप्त होता है। इसलिए प्रभु रामचंद्र ने यहां पर आदि जगन्नाथ की सेवा की है, पूजन किया है उनका, और भगवान जगन्नाथ ने प्रभु रामचंद्र को दिव्य धनुष यहां पर प्रदान किया है। उसको दिव्य चाप जगन्नाथ कहते हैं, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे प्रभु रामचंद्र को आदि जगन्नाथ भगवान ने दिव्य धनुष दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने रावण का वध किया है। इसलिए धनुष को कहते हैं दिव्य चाप, और जगन्नाथ जी का नाम है दिव्य चाप जगन्नाथ। इसी जगह पर रावण के दो दूत यहां पर भेष बदल कर आए थे, पंछी बनकर। आपने रामायण में देखा होगा, रावण ने कहा था कि देख के आओ वहां पर उनके तंबू में कौन कौन है, कौन से वीर हैं, कौन से उनके पास शस्त्र अस्त्र हैं, क्या है उनके पास, कितना ग्रुप्स है उनके, कौन कौन लीडर है उनके, सब पूछ के आओ, देख के आओ। तो अपने सिद्धि के द्वारा वो यहाँ पर पंछी बनकर आए और सभी जगह पर, हर जगह पर जाकर देख रहे थे कि क्या क्या इनका प्लानिंग क्या है, इनका योजना क्या है। तो विभीषण उस समय शरणागति प्राप्त कर चुके थे, तो ये राक्षसी माया जो है वो अकेले पहचान गए कि ये दोनों पंछी नहीं है, ये शुक और चारण है। तो उन्होंने उनको मंत्र बोलकर अपने रूप में प्रकट करवाया और सभी बंदरों ने उनको बंदी बनाकर राम के सामने प्रस्तुत किया। तो ये उनकी अवस्था देखकर बड़े डर गए वो, और प्रभु रामचंद्र को शरण गए वो, शुक और चारण। तो प्रभु रामचंद्र ने कहा कि मेरे पास जो भी शरणागत होता है उसको मैं अभय देता हूँ, इसलिए शुकचारण आप निश्चिंत रहो, आपका वध नहीं किया जाएगा। और वानरों को आदेश करते हैं इनको जो दिखना है वो सब दिखाओ, वॉट एवर दे वॉन्ट टू सी शो देम, डोंट वरी, उनको जो देखना है देखने दो, और देखकर जो रिपोर्ट बनाना है वो जाकर रावण को समझाने दो। तो शुक और चारण को इतना आश्चर्य हुआ, कितने दयालु है भगवान राम, हम उनके कब्जे में हैं पूरी तरह से, हमको जीन मार सकते हैं, हत्या कर सकते हैं हमारी, लेकिन क्योंकि हम शरणागत हो गए हैं इसलिए वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो रावण को जाके बताते हैं, हे महाराज आप उनको सीता वापस कर देना, वो इतने महान हैं कि हमारा ये विश्वास हो गया है कि स्वयं भगवान है, ये लग रहा है मानव है लेकिन मुझे ये अनुभूति हो गई पूरी तरह से कि ये परम भगवान है, ये भगवान विष्णु है, इसलिए आप अपने मति को शुद्ध करके इस सीता के चक्कर से मुक्त हो जाना, सीता को वापस करना, आप भी शरणागति स्वीकार कर लेना। लेकिन रावण की मति इतनी भ्रष्ट हो गई थी कि वो विभीषण ने समझाया, शुकचारण ने भी समझाया, आगे रणभूमि से आकर इंद्रजीत ने भी समझाया, पिताजी अभी भी आपको टाइम है, हम तो सब मरने वाले हैं लेकिन आप जिंदा रहो, सीता को वापस कर दो। तो मूर्ख रावण क्या कहते हैं, इंद्रजीत लगता है डर के मारे भाग के आए हो। बोले पिताजी मैं डर के मारे भाग के नहीं आया हूँ, मुझे आपके बारे में बहुत प्रेम है इसलिए मैं आपको समझाने आया हूँ, युद्ध से ब्रेक लेकर आया हूँ, दोबारा जाऊँगा और मरना है तो मर जाऊँगा, मुझे पता हो गया है कि मैंने ब्रह्मास्त्र चलाया, चक्र अस्त्र भी चलाया, पशुपति अस्त्र भी चलाया, फिर भी तीनों अस्त्र जो है वो लक्ष्मण को प्रणाम करके प्रदक्षिणा करके लौट के आए हैं मेरे तोणीर में। इसका मतलब ये होता है कि ये तीन अस्त्र जो है केवल भगवान को ही प्रणाम करते हैं और किसी को प्रणाम नहीं करते। इसलिए मुझे अनुभूति हो गई है कि जिनके साथ हम युद्ध करने जा रहे हैं वो स्वयं भगवान हैं, इसलिए जो मुझे अनुभूति हो गई है मैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूँ। तो क्या कहते हैं, तुम डरपोक हो, डर के मारे यहाँ पर भाग के आए हो। बोले नहीं नहीं मैं जाऊँगा और अगर मरना ही है तो लक्ष्मण के हाथों मरना पसंद करूँगा, क्योंकि वो भगवान है, मेरी मुक्ति हो जाएगी उनके हाथ से। इतनी मति भ्रष्ट होते, कान किसने बंद कर लिए, बुद्धि के दरवाजे बंद कर लिए, कौन क्या कर सकता है उसके लिए। तो शुकचारण ने भी उनको यही बताया, फिर भी वो नहीं माने, युद्ध की उनकी निश्चित थी युद्ध करना ही है उनको। इसी जगह पर जब राम भगवान आए और एक जगह है जहाँ पर वो बड़े चिंतित थे, अभी वो उदास हो गए कि क्या करें, इतना बड़ा लंबा धन समुद्र है, यहाँ से कैसे जाए हम लोग, वो चिंता में थे। तो विभीषण से सलाह किया क्या करना चाहिए, तब उन्होंने कहा कि समुद्र देव जो है वरुण देव वो आपके सेवक हैं, उनको आप पुकारो, वो आएंगे आपकी सेवा में, तब उनसे रास्ता मांगना आप समुद्र से। तो इस जगह पर प्रभु रामचंद्र के लिए लक्ष्मण ने दर्भ लाया, दर्भ यानी कि दुर्वांकुर, दुर्वा लाके उन्होंने कहा लक्ष्मण दुर्वा लेके आओ, हम शयन करेंगे मतलब तपस्या करेंगे, सोएंगे नहीं, हम दर्भासन पर बैठकर वीर शयन आसन में बैठकर तपस्या करेंगे और समुद्र देव को पुकारेंगे। तब मुझे प्रमाण मिला पूरी तरह से कि 7 दिन तक यहाँ पर प्रभु रामचंद्र ने दर्भासन पर बैठकर तपस्या किया है, उपवास किया, व्रत किया, और जब समुद्र देव ने यहाँ पर दर्शन नहीं दिया तो फिर लक्ष्मण से कहा लाओ मेरा कोदंड लेके आओ, कोदंड यानी कि धनुष, और आग्नेयास्त्र को मंत्रित करके, अभिमंत्रित करके उन्होंने समुद्र पर छोड़ दिया। तब त्राही माम करके वरुण अपनी पत्नी को लेकर यहाँ पर आए, वरुण वारुणी, तो उनका दर्शन यहाँ पर है। तो वरुण ने भी और वारुणी के साथ में आकर प्रभु की शरणागति प्राप्त कर ली है। यहाँ पर विभीषण ने यहाँ पर शरणागति प्राप्त कर ली है। जब विभीषण ने शरणागति प्राप्त कर ली तो इसी जगह पर प्रभु रामचंद्र ने वो श्लोक कहा, रामायण के वाल्मीकि रामायण में 18वें अध्याय में 33वां श्लोक है वो, इसमें उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति मुझे कभी भी मेरी शरणागति स्वीकार करता है उसको जीवन भर में उसकी रक्षा करूँगा। एक बार अगर वो जीव कहे कि मैं आपका हूँ तब अस्मिन, तब मैं कभी नहीं भूलता हूँ उस जीव को, निरंतर काल के लिए उसकी रक्षा करूँगा। मतलब अनंत जन्मा जन्मांतर में एक जन्म में एक बार अगर आपने कहा कि दवा अस्मिन तो सारे जन्म तक आपकी वो रक्षा करेंगे। जब तक आप गौलोक नहीं पहुंचेंगे तब तक आपकी रक्षा करेंगे, वो सुरक्षा कवच प्रदान करेंगे हमारे लिए। ये श्लोक भी भगवान ने इसी जगह पर खड़े होकर कहा गया था, बड़ा दिव्य स्थान है ये। और इस जगह का तपस्या शुद्ध निरपेक्ष भाव से भगवान का पूजन ये तो सार है ही, लेकिन सबसे बड़ा सार इस जगह का है ये शरणागति स्थल है, ये भगवान का आश्रय ग्रहण करने का स्थल है। तो हम सब लोग मुंबई से यहाँ पर क्यों आए हैं? मत्था टेकने के लिए ज़रूर आए हैं, प्रार्थना करने के लिए आए हैं, मन की इच्छा को पूरी करने के लिए भी आए हैं, लेकिन हम एक्चुअली वास्तवता से अपना मुंबई का जो सुख सामग्री है सब छोड़कर यहाँ पर आए हैं भगवान की शरणागति स्वीकार करने के लिए। टू सरेंडर आवर लाइव्स टू द लॉर्ड, बॉडी माइंड एंड वर्ड्स एंड द सोल, काया वाचा और वचन, मतलब काया वाचा और मन, विचार वाचा शरीर और आत्मा के साथ में हम भगवान को यहाँ पर शरणागत होना चाहते हैं। ये शरणागति की सली है, क्योंकि विशेष रूप से यहाँ पर भगवान ने कई लोगों को शरणागति दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर अभी भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप हमें शरणागति दीजिए। आप शरण वत्सल हैं, आप शरणागति मांगने वाले जीव पर बड़ी दया करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए हम बड़ी अभिलाषा लेकर दूर से आए हैं कि आप हमें स्वीकार करेंगे। प्रभु रामचंद्र ने स्वयं के लिए कितना कष्ट भोगा, लेकिन सभी जीवों के लिए आश्रय दिया, उनको तार दिया उन्होंने। इसी जगह पर एक सुंदर कहानी और हुई है, जो गिलहरी की कहानी है ना स्क्विरल, वो भी यहीं पर हुई है, क्योंकि यहीं पर ब्रिज बांधने का काम शुरू हुआ। और एक कथा भी यहाँ पर हुई है, वो सब वानर लोग नाम लिखकर प्रभु का वो नल को हाथ में देकर छोड़ रहे थे उसको, तो प्रभु ने भी सोचा कि मैं भी कुछ पत्थर डालूंगा, तो उन्होंने पत्थर लिया और जल में डाल दिया, तो वो पत्थर डूब गया, वो बहुत शर्मिंदा हो गए, ही वॉज वेरी एम्बेरेस्ड। सब वानर लोग डाल रहे हैं और सबका तैर रहा है और मैं डाल रहा हूँ तो वो डूब रहा है। तो हनुमान से उन्होंने बोला हनुमान जी बड़ा संकोच हो रहा है मुझे, तो हनुमान ने कहा जिसको आपने त्याग दिया उसको तो डूबना ही है, वट एल्स विल हैपन टू हिम, हाँ जिसको पकड़ा है आपने वो रहेगा, जिसका नाम आप जिसके ऊपर है, आपका नाम जिसके ऊपर है वो भी तैरेगा, लेकिन आपने छोड़ दिया तो फिर उसके लिए आपके उद्धार कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर प्रभु के नाम की महिमा भी प्रकाशित हो गई है, प्रभु से भी अधिक प्रभु का नाम प्रकाश शक्तिशाली है, प्रभु का भी प्रभु से भी अधिक प्रभु का नाम जो है वो अधिक शक्तिशाली है। नाम रूप लीला और धाम ये प्रभु के 4 विशेष अंग हैं और प्रभु से भी ये शक्तिशाली हैं, प्रभु से अधिक दयालु हैं, प्रभु का नाम उनसे भी अधिक शक्तिशाली है, प्रभु का धाम उनसे अधिक दयालु है, प्रभु की लीलाएं जो हम सुनते हैं प्रभु समान ही है, लेकिन लीलाओं का श्रवण करने से भगवान की अधिक कृपा प्राप्त होती है। नाम और रूप जो दर्शन करते हैं हम अपने आँखों से, प्रभु का स्वरूप जो अनंत है लेकिन वो सीमित रूप में भी हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं, उनका दर्शन करने से जो कृपा प्राप्त होती है वो प्रभु से कृपा से भी अधिक शक्तिशाली है। तो नाम की महिमा क्या है इस जगह पर प्रभु ने प्रकट किया उस महात्मे को, कि वो स्वयं खड़े हैं लेकिन पत्थर डूब रहा है, लेकिन जिस चीज़ पर उसका नाम लिखा गया हम प्रभु का वो सब तैर रहे हैं। तो हमको भी अगर तैरना है भव सागर में तो उनका नाम लेना होगा। हरेर नामैव केवलम, और कोई अन्यथा गति नहीं हमारे लिए। तो यहीं पर वो गिलहरी जो थी वो क्या कर रही थी, बहुत विस्तार में वर्णन रामायण में दिया है कि वो भगवान की सेवा करना चाहती थी। वो जानती थी कि सीता देवी का हरण हो गया है, भगवान बड़े व्याकुल है उनको मिलने के लिए, रावण को मारने के लिए, और सेवा का एक भाग है यहाँ से सेतु बनकर वहाँ पहुँचना है, फिर युद्ध होगा, फिर सीता का प्राप्ति हो जाएगी। तो उसमें सेवा करना चाहती थी, भगवान की बड़ी भक्त थी वो। मनुष्य का शरीर ना होने पर भी हम लोग सेवा से अपने आप को अगर इच्छा है तो वो रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि सेवा के लिए कोई बाधा नहीं है। देयर इज़ नो मटीरियल इम्पेडिमेंट इन सर्विस टू द लॉर्ड। भौतिक स्तर पर भगवान की सेवा में कोई बाधा नहीं है, अवरोध नहीं है। तो गिलहरी के शरीर में होते हुए भी अपनी तरफ से वो कोशिश कर रही है पूरी तरह से। क्या कर रही है, जल में छलांग लगा रही है, गीली होके फिर वो बालू में अपने आप को लेटपोट होके, शी इज रोलिंग इन द डस्ट, और जितने बालू के दाने लगे हुए हैं वो जाकर हिला रही है और दाने उसमें गिर रहे हैं। और हनुमान जी हिमालय से यहाँ से वहाँ से बड़े बड़े पर्वत चट्टान उठाकर ले आ रहे हैं। तो एक बार हनुमान जी के बीच में आई, वो हनुमान जी बड़ा पर्वत लेकर आए तो उसके बीच में आई, तो हनुमान जी कहा हटो यहाँ से, देखते रही हो इतना बड़ा पर्वत लाया है, तू क्या काम कर रही हो, कुछ दाने फेंक रही हो, हाँ हजारों और करोड़ों जन्म भी लेंगे तो तेरे ये सेवा से सेतु पूरा नहीं होने वाला है। प्रभु जी वहाँ पर खड़े थे, उन्होंने हनुमान को रोका, उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो, आप पहाड़ को उठा रहे हो, आपको शक्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, मैंने आपको दी है। गिलहरी कुछ दाने डाल रही है रेत के सेतु में, उसको शक्ति किससे प्राप्त हो रही है, मुझकी तरफ से प्राप्त हुई है, मेरी तरफ से प्राप्त हो रही है। वो अपनी सेवा के लिए 100% शक्ति लगा रही है, और उसकी 100% शक्ति का क्या प्रूफ है कि वो कुछ दाने फेंक पा रही है। और आप जब अपनी पूरी शक्ति लगा रहे हो तो आपकी शक्ति का प्रमाण क्या है कि आप पहाड़ को उठा के डाल रहे हो, लेकिन आप अपना 100% लगा रहे हो, वो भी अपना 100% लगा रही है, तो आप कैसे श्रेष्ठ हो गए उससे। शी इज गिविंग हर 100%, यू आर गिविंग योर 100%, मेरी दृष्टि से आप दोनों समान हो। ये जो चिरंतन तत्व है भक्ति का और सेवा का, तो प्रभु ने यहाँ पर प्रकट किया है, इसी जगह पर यहाँ पर वो प्रकट किया कि सेवा कोई उच्च और नीच नहीं होती, सेवा का प्रमाण से सेवा बड़ी और छोटी नहीं होती। जैसे कि कुछ मिलीग्राम रेत के दाने फेंके जा रहे हैं और करोड़ों टन के पर्वत डाले जा रहे हैं, कितना बड़ा डिफरेंस है उसके अंदर मात्रा में, लेकिन प्रभु जो है मात्रा को देखते नहीं है, प्रभु भाव को देखते हैं, क्योंकि वो भावग्राही जनार्दन है, वो हर चीज़ का हर कार्य का भाव ग्रहण करते हैं। वो आपका 56 भोग ग्रहण नहीं करते हैं, वो 56 भोग आपने किस भाव से बनाए उस भाव को ग्रहण करते हैं। गरीब की रुखी सुखी भी खाते हैं, हाँ विदुर के पत्नी का केले का छिलका भी खाया, और बहुलाश्वक राजा के घर पे गए 56 भोग भी खाया उन्होंने, और दुर्योधन का भोग त्याग दिया क्योंकि भाव में गड़बड़ थी वहाँ पर, इसलिए वो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन। तो उन्होंने आप बताया कि कोई सेवा बड़ी कर रहा है कोई छोटी कर रहा है, उससे भगवान के सामने वो बड़े और नीचे छोटे नहीं होते। आपका भाव कैसा है, किस भाव से आप कर रहे हो। आज क्रिसमस का दिन है तो जीसस क्राइस्ट के पास भी 2 भक्त आए थे, एक का नाम था मेरी और एक का नाम था मार्था। तो मेरी जो थी वो हमेशा जीसस के सामने बैठकर सुना करती थी कि जीसस क्या बोल रहे हैं, और जो मार्था जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ सेवा में लगी रहती थी, बिजी इन सर्विंग, डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटीज। एक बार मार्था ने जाकर मेरी के लिए कंप्लेंट किया कि माय लॉर्ड जीसस, दिस लेडी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, ऑलवेज सिटिंग एंड लिसनिंग। उन्होंने कहा कि जो इसका भाव है, जिस भाव से वो सुन रही है, वही मेरे लिए सबसे प्रसन्नीय और आनंदमय चीज़ है, और आप जो सेवा कर रहे हो वो भाव में मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए वो बैठ के सुन रही है और आप मेरे लिए कुछ सेवा कर रहे हो, दोनों मेरे लिए समान है कि दोनों का भाव श्रेष्ठ है। प्रभुपाद जी भी ऐसे ही श्रवण किया करते थे। जब भक्ति सुदान जी महाराज कथा करते थे तो एक बार वो शेषशाही नाम की जगह है कोशी में, जहाँ पर भगवान ने गोपियों को अनंत शेष के ऊपर लेटे हुए भगवान, जैसे यहाँ पर कैसे हैं वैसे शेषशाही विष्णु भगवान का दर्शन दिया था, क्योंकि गोपियों ने और ग्वाल वालों ने मांग की थी उनसे कि हमको जरा आपका वो दर्शन दिखाओ वैकुंठ वाला, तो उन्होंने दर्शन दिया उनको। तो वो जगह है शेषशाही जो कोशी में है, तो वहाँ पर भक्ति सिद्धांत जी यात्रा लेकर गए थे और सब लोग कथा चल रही थी महाराज की, प्रभुपाद जी बैठे थे गृहस्थ के रूप में और सब लोग उठकर चले गए दर्शन करने के लिए और प्रभुपाद जी आखिर में अकेले रह गए और कथा चलती रही। तो सब चलने के बाद प्रभुपाद जी को उन्होंने कहा भक्ति सुदान जी महाराज ने कि यू आर अ वेरी गुड लिसनर, और बाकी लोगों को बताया कि आगे जाकर ये अभयचरण डे जो भी लिखेगा उसको प्रकाशित करो, ऐसे बाकी शिष्यों को आदेश दिया, बिकॉज ही लिसन्स वेरी नाइसली अटेंटिवली। तभी तो गृहस्थ थे, सब बाकी सब सन्यासी ब्रह्मचारी थे, तो उनको आश्चर्य हुआ, अरे गृहस्थ की तारीफ इतनी क्यों कर रहे हैं। जैसे गुरु भी अपने शिष्यों को गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के रूप में देखते नहीं है, वैसे भगवान भी हमको पुरुष स्त्री और सन्यासी गृहस्थ ब्रह्मचारी धन वाला गरीब सुंदर कुरूप पढ़ा लिखा अनपढ़ इस दृष्टि से देखते नहीं कभी, वो तो अपने प्रिय बालक के रूप में देखते हैं। वैसे ही उनके प्रतिनिधि जीसस क्राइस्ट है, वैसे ही उनके प्रतिनिधि भक्ति सिद्धांत सरस्वती है, वो व्यक्ति के अंदर का जो भाव है सार रूप में उसको ग्रहण करते हैं। व्हाट इज इन योर हार्ट, हम लोग कितना भी बड़ा नाटक करेंगे भक्ति का, फिर भगवान आपके हृदय में क्या है वो सब जानते हैं बराबर से, और उसी को वो स्वीकार करते हैं, उसी को रिस्पॉन्स देते हैं। सो वी हैव कम हियर नेकेड, एक्चुअली वी कैनॉट हाइड अवर सेल्फ, वॉट एवर इज देयर इज फुल्ली एक्सपोज टू गॉड। हम कितना भी नाटक करेंगे, छुपाएंगे और ढोंग करेंगे, भगवान को हम फंसा नहीं सकते। भगवान हर एक जीव के अंदर जो भाव है उसको जानते हैं उसको, इसलिए हमको यहाँ पर प्रामाणिक होकर भगवान से कहना चाहिए हाँ आपकी हम जानते हैं कि आप सब जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि हमारे अंदर कोई भाव नहीं है, तो हम यहाँ भाव की भिक्षा मांगने आए हैं आपके चरणों में, और हम जानते हैं कि आप बड़े दयालु हैं, करुणा के सागर हैं, और हम चाहते हैं कि उसमें एक बूंद करुणा हमें भी मिले और हमें भी कुछ सेवा भाव प्राप्त हो जाए, जो सेवा भाव आपको अच्छा लगे, आपको प्रसन्न करे, ऐसा सेवा भाव की भिक्षा मांगने के लिए हम लोग यहाँ पर आए, और ऐसा भाव से हम लोग यहाँ प्रार्थना करेंगे, भगवान के चरणों के शरण ग्रहण करेंगे, तो ही हमारी इतनी लंबी आने की यात्रा जो है वो सफल है, नहीं तो आपने भी टिकट निकाला हमने भी निकाला और दोनों का वेस्ट हो गया। तो सब लोग अभी हाथ जोड़कर इस अश्वत्थ के पेड़ के नीचे बैठकर सर्पों के बलराम जी का ये स्थान है जो अनंत शेष उनके अवतार हैं, अनंत शेष के द्वारा सभी सर्पों का निर्माण हुआ है, वो सब सर्पों के क्या कहते हैं उनको रक्षक हैं, और ये यहाँ पर क्यों विराजमान है, ये भगवान के पवित्र स्थान की रक्षा करने के लिए यहाँ पर सुब्रह्मण्य बलराम जी के अवतार जो हैं यहाँ विराजमान हैं। इस पवित्र स्थान पर अश्वत्थ की छाया में बैठकर आदि जगन्नाथ के सानिध्य में, दर्भ शयन राम के सानिध्य में, लक्ष्मी देवी नरसिंह भगवान इन सब के सानिध्य में, इस भूमि पर जहाँ पर अनंत लोगों ने शरणागति ग्रहण कर ली है, ऐसे पवित्र स्थान पर बैठकर आप दो मिनट के लिए प्रार्थना करना और हृदय से पुकारना भगवान को, हृदय से कि लेट अवर लाइफ बी सक्सेसफुल, वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट अवर लाइफ बाई डूइंग समथिंग नॉनसेंस हियर एंड देयर इन अटेंशन, लेट अस बी अटेंटिव एंड प्रे टू द लॉर्ड टू गिव अस ट्रू शेल्टर, सही आश्रय हमें प्राप्त हो जाए, इसके लिए आप प्रार्थना करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।